اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ پروگرام ہماری نکاح کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم نے اپنے پروگرام میں گفتگو کے لیے جناب ناصر عباس شرازی صاحب کو دعوت دی ہے، جو ماہر سیاسیات ہیں۔ شاہد صاحب، سب سے پہلے تو اسٹوڈیو آمد پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔
بہت شکریہ۔
اور اسی کے ساتھ ہی بلا فاصلہ اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے سوال سے کہ ابھی حالیہ دنوں میں یہ خبر سننے میں آئی کہ ترکی میں انکرا شہر کے اندر حزب مخالف کے متعدد گروہوں کے درمیان مذاکرات ناکام ہو گئے۔ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ مذاکرات کیا تھے، کس بنیاد پر تھے، اور حزب مخالف کے اندر بھی یہ گروہ اور یہ مذاکرات، یہ کیا بات ہے، اس کی تفصیل سے آگاہ کیجیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس اہم ترین موضوع کے اوپر ایک مرتبہ پھر ایک ٹاک شو کا انعقاد کیا۔ آپ کے ادارے نے جو یہ کام کیا ہے کہ لوگوں کو صحیح آگاہی دینے کا، اور اتنے طویل عرصے سے آپ کے جتنے شام میں کم از کم تقریباً دوسرا سال ہے اس اپرائزنگ کو، جتنے بھی آپ کے انالیسس تھے تو گریجولی وہ پروو ہوئے، ثابت ہوئے، تو بہرحال اس کی آپ کو کریڈٹ جاتا ہے ادارے کو۔ ابھی آپ نے جو سوال کیا ہے کہ شام میں موجودہ صورتحال میں کہ جو ڈائیلاگ کی بات چلی تھی تو وہ کیوں مثلا ڈیڈ لاک کا شکار ہوگی، میں ابھی اس ڈائیلاگ کی بات نہیں کر رہا کہ جو ڈائیلاگ حکومت کے اور اپوزیشن کے درمیان ہونا تھے۔ خود یہ بات آپ سوچیں کس کی اچیومنٹ ہے۔ ایک پارٹی ہے، وہ اٹھتی ہے اور وہ کہتی ہے گولی کے زور پہ اور بندوق کے زور پہ، اور اس کے پیچھے اسلحہ، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ مختلف عالمی ادارے اور کنٹریز اور ان کی کنسپریسی کی بنیاد پہ وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے ہم حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، یہ حکومت قاتل ہے، یہ اللیجیٹمیٹ ہے، ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے، اس کے مقابلے میں ہم گن کے ساتھ جو ہے نا وہ ثابت کریں گے، ہم چیزوں کو آکوپائی کریں گے، ایک یہ خیال ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بات چلتی ہے کہ نہیں جی، حکومت اور اپوزیشن کو مذاکرات کرنے چاہیے۔ یہ کس کی فتح ہے؟ خود یہ بھی ایک کلیئر کٹ ایویڈنس ہے کہ وہ جو پہلے دن سے مذاکرات کی بات کرتے تھے اور وہ جو پہلے دن سے گولی کی بات کرتے تھے، ان میں سے گولی والوں کو شکست کا سامنا ہوا ہے، اور مذاکرات کی بات جو ہے نا وہ ثابت ہوئی ہے کہ حکومت جو ہے وہ پہلے دن سے رائٹ تھی۔ ایک دوسری بات یہ کہ مذاکرات بنیادی طور پہ بعد میں ہونے ہیں، جنیوا میں مذاکرات طے ہیں اور ابھی اس ماہ میں ہونا تھے لیکن ان کو پوسٹ پون کیا گیا ہے، اور اب وہ اگلے مہینے جولائی کے اندر متوقع ہیں کہ جنیوا مذاکرات ہوں گے۔ یہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات ہیں، لیکن جو مذاکرات انکرا میں تھے وہ مذاکرات بنیادی طور پہ اپوزیشن کے مختلف فیکشنز کے اندر تھے۔ اپوزیشن میں اس وقت دو پریکٹیکل ڈویژنز ہیں اور بعض ذیلی ڈویژنز ہیں۔ جو پریکٹیکل ڈویژنز ہیں وہ ان میں سے ایک ماڈریٹ ہیں کہ جو ایگزائل میں تھے، بہت سارے وہ لوگ ہیں کہ جو بہرحال پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے سے اپنی حکومت کو دوبارہ لانا چاہ رہے ہیں، اور ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے کہ جو انفلٹریٹڈ ملیٹنٹس ہیں، جو جارڈن سے گئے، جو سیریا سے کے اندر بھی تھے، جو لبنان سائڈ سے گئے، جو سعودی عرب سے گئے، جو پاکستان اور دیگر کنٹریز سے جو ان کو پلانٹ کیا گیا، لایا گیا، تو وہ ظاہر ہے کہ تکفیری گروہ ہے مینلی۔ وہ تو اپنے مقابلے میں کسی اور کو بھی برداشت نہیں کرتا ہے، چاہے جائے کہ خود انہی لوگوں کو جو انہی کے کیمپ میں کھڑے ہیں۔ تو یہ دو ڈویژنز ہیں آئیڈیالوجی کے اعتبار سے ان کے اندر، اور اس میں پھر جو سب ڈویژنز ہیں وہ یہ ہیں کہ کوئی ایک گروپ ہے جو یو اے ای کا گروپ ہے، ایک گروپ ہے جو قطر کا گروپ ہے، ایک گروپ ہے جو سعودی عرب کا گروپ ہے، ایک گروپ ہے جو مثلا ترکش گروپ ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے یہ طے کیا کہ سیرین گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات سے پہلے ہم اپنے گروہوں کو تو اتفاق پہ لے کے آئیں، اور آئندہ کی فیوچر گورنمنٹ کے لیے ان کے درمیان تو حصوں کی تقسیم طے پا جائے، اور آئندہ کے لیے کون ریپرزینٹیٹیو ہوگا اس سیرین کولیشن کا، اینٹی سیریا گورنمنٹ کولیشن کا، یہ تو طے پا جائے۔ لیکن انکرا کے جس ہوٹل میں انہوں نے مذاکرات کا انعقاد کیا وہ 3 دن کے لیے بک کیا تھا، اور دے ور ویری شیور کہ ان 3 دنوں کے اندر ہم اس کا رزلٹ لے لیں گے۔ پریکٹیکلی یہ ہوا کہ 3 دنوں کے یہ مذاکرات 7 دنوں پہ چلے گئے، اور 7 دنوں کے بعد بھی یہ ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے، ہوٹل وائنڈ اپ کرنا پڑا، ہر کنٹری اپنے اپنے گروپ کے جو ملیٹنٹس تھے ان کو لے کر اپنے اپنے جو پناہ گاہیں ان میں چلا گیا، اور پریکٹیکلی مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے، نہ ہی شیئر تقسیم ہو سکا، اور نہ ہی جو ہے وہ سربراہی کے لیے کوئی چیز طے ہو سکی، اور نہ ہی جو حصے پارلیمنٹ کے اندر اپنے بطور خود سے کرنا چاہ رہے تھے وہ کر سکے۔ تو خود یہ ایک فیلئر کا شکار ہو گئے ہیں، اور عملاً اگر یہ مذاکرات کی میز پہ آتے ہیں تو خود میں آپ کو رائٹرز کی ایک رپورٹ کا حوالہ دیتا ہوں کہ جس نے یہ کہا کہ جب یہ مذاکرات کی میز پہ جنیوا میں بیٹھیں گے تو ایک طرف یہ لوگ ہوں گے کہ جو ابھی انٹرنل سیٹ اپ کے لحاظ سے بھی مطمئن نہیں ہیں، اور ان میں سے جو ٹیم نیگوسیشن ٹیبل پہ بیٹھے گی وہ کتنا کریڈیبلٹی رکھتی ہے اور کتنا پیچھے سے اس کو مینڈیٹ ملا ہے، یہ بھی انکلیئر ہے، خود اس ٹیم کے لیے بھی انکلیئر ہوگا، چونکہ ان کے درمیان باہمی ہم آہنگی کا فقدان ہے بہت زیادہ۔ تو दूसरी तरफ उनका मुकाबला एक ऐसी टीम के साथ होगा जिसने दहाइयों तक इसराइल को नेगोशिएशन टेबल पे बैठ के डील किया है, जिसने दहाइयों तक अरब कंट्रीज को डील किया है। तो वो कैपेसिटी और ये कैपेसिटी बड़ी डिफर करती है। तो प्रैक्टिकली दोनों एंड्स पे जो सीरियन गवर्नमेंट के मुखालफ ग्रोह थे उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा।
ऐसा एक सवाल यहाँ पर जन्म लेता है कि तुर्की की मौजूदा बदअमनी जो कमोबेश पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले चुकी है, क्या ये शामी उमूर में मदाखलत का रद्द अमल है तुर्की अवाम का या कुछ और, इस बारे में बताइए।
देखें, मेरा ये ख्याल है कि पकी हुई है सूरत हाल अंदर से, और लेकिन लोगों को कोई वे आउट नहीं मिल रहा था इस मौजू पे स्टैंड लेने का, ये बात करने का या गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने का। तो ये जो जिस स्क्वायर के अंदर ये अपनी बिल्डिंग्स चेंज करना चाहते हैं और उसको एटमन एम्पायर तकसीम स्क्वायर के जगह पर, तो ये असल में तो ये एक इशू है, मैं क्योंकि इशू नहीं, ये एक जेन्युइन इशू है। लेकिन इस इशू के ऊपर जो रद्द अमल है वो इस इशू के साथ कंपेटिबल नहीं है, ये इस इशू के साइज का रद्द अमल नहीं आया है। ये जो रद्द अमल आया है ये उस नफरत का रद्द अमल आया है जो मौजूदा हुकूमत की प्रो अमेरिका और प्रो नेटो और प्रो इसराइल पॉलिसीज के नतीजे में सीरिया के अंदर जो रोल प्ले किया और उसके जो आप कह लें कि आफ्टर इफेक्ट्स खुद तुर्किश टेरिटरी के ऊपर आ रहे हैं और तुर्किश लोगों के ऊपर आ रहे हैं, ये उसका इफेक्ट जो है ना वो है। और यही वजह है कि अगर आप देखें गौर करें तो इतनी बड़ी मैन पावर निकली है, तकरीबन 70 शहरों के अंदर निकली है, और अभी ये जो जुमे वाले दिन प्रोटेस्ट थे इनको दुनिया के तमाम इंटरनेशनल एजेंसीज मॉनिटरिंग एजेंसीज ने इसको तुर्किश हिस्ट्री के बड़े मुजाहरे, कम से कम एक डिकेड के बड़े मुजाहरे जो है वो करार दिया है। तो ये अल्टीमेटली प्रेशर पुट करेंगे गवर्नमेंट को, जो सीरिया पॉलिसी है उस पॉलिसी के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रेशर विद इन टेरिटरी आएगा। एक है कि स्ट्रेटजिकल चेंज, वो मुझे नहीं लगती, लेकिन एक दूसरा है कि आप एक चीज़ को करने की कैपेसिटी खो बैठे, वो मुझे लगती है कि इस तरफ जाएंगे कि जब आप विद इन कंट्री आपको प्रेशर होता है, आपको अपने आवाम के साथ डील करना होता है, इश्यूज कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा आपके लिए उठ जाते हैं, तो फिर आप उस तरीके से फोकस्ड अप्रोच के साथ इतनी बड़ी वार को जो आपने अपने बॉर्डर के ऊपर लेकर आए नहीं चल सकते हैं। तो यकीनन इनकी पॉलिसी अफेक्ट होगी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, पॉलिसी अफेक्ट होगी। और अभी बहुत सारे फैक्शंस ने ये बात उस तरीके से नहीं की है, अगर ये कैफियत जारी रहती है तो शाम के अंदर तुर्की के अंदर जो अलवी हैं, तुर्की के अंदर जो मॉडरेट्स हैं, तुर्की के अंदर जो मसलन लेफ्ट बाएं बाजू की वो हैं, वो बिल्कुल इस पर रद्दमल देंगी, और अब देखेंगे कि ये रद्दमल आना शुरू हो गया है। तुर्की को अपनी पॉलिसी को रिटेन रखना बहुत बड़ा अजाब बन जाएगा तुर्की के लिए, ये एक रियलिटी।
शाहिद साहब, अब तक के हालात का जायजा लेने के बाद दुश्मन के अहदाफात क्या नज़र आते हैं? जो अभी मौजूदा सूरत हाल है उसमें तो दुश्मन जो है वो फरार की हालत में नज़र आता है, इस सूरत में दुश्मन के क्या अहदाफात हो सकते हैं?
देखें, एक बड़ी स्ट्रेटजिकल गेम चल रही है, आप ज़रा मुआज़ना करें। एक वक्त है कि लबनान की हुकूमत, लबनान के अंदर हिजबुल्ला एक ग्रुप है, और शाम की हुकूमत जो है वो इतनी बड़ी हुकूमत थी कि जो इन अ सेंस हाकिम रही है, लबनान के ऊपर भी हाकिम रही है। आज उस शाम को कौन चला रहा है? प्रैक्टिकली आज उस शाम को हिजबुल्ला और उसकी स्ट्रेटजी जो वो चला रही है। तो एक तो आप ये देखें कि जो रेजिस्टेंस का ब्लॉक है कितना स्ट्रेंथन हो गया है, कि पहले उसका दायरा लबनान के अंदर था, कुछ उसके ऑफशूट्स जो हैं वो इराक के अंदर थी, लेकिन सूर्या बतौर गवर्नमेंट तो कर रहा था लेकिन पूरी टेरिटरी इस तरीके से उसके लिए रोल प्ले नहीं कर रही थी, और अब प्रैक्टिकली रोल प्ले करेगी। गोलान हाइट्स के ऊपर पहले कौन बैठा हुआ था? एक आर्मी। अब गोलान हाइट्स के ऊपर अगर हिजबुल्ला और सीरिया के टाइज को मद्देनजर रखे तो प्रैक्टिकली इस वक्त हिजबुल्ला का नफूज है, तो इसराइल के लिए एक और बॉर्डर अनसेफ हो गया, ये आप देखें। तीसरी बात यह है कि जो अपोजिशन ग्रोह हैं उनके अंदर मसलन आप जानते हैं कि इन मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान, बिलखसूस जो तकफीरी और अलकायदा ग्रोह गए हुए हैं उनके दरमियान और दीगर ग्रोहों के दरमियान जो पॉलिटिकल ग्रोह हैं उनके दरमियान शदीद जंगी हुई हैं, शदीद लड़ाई हुई है और मुख्तलिफ शहरों के अंदर हुई है, जिस जी हम्स में हुई है, उसमें हलब में हुई है, और उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा इन्होंने कुछ लोगों को उसी अपने तकफीरी स्टाइल के अंदर मारा है, उनके गले काटे हैं, बाज़ लोगों को एग्जीक्यूट किया है। उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट ये हुआ है कि इनके दरमियान गैप बहुत बढ़ गया है, और पहली बार एक नया तरह का प्रेशर इसराइल के ऊपर एक नई तरह का प्रेशर खुद जो है वो सीरिया के दीगर तमाम तबकात ने लेना शुरू कर दिया कि ये तो मिलिटेंट्स हैं, अगर ये आएंगे तो ये वही करेंगे कि जो ये पूरी दुनिया के अंदर करते रहें। इस पर आप देखिए क्या चेंज आई है, राशिद अल कनोशी को इस पर बात करना पड़ी है। और अगर आप आज से कोई 3 से 4 दिन पहले, 3 दिन पहले इसराइल की चीफ इंटेलिजेंस चीफ की अगर आप स्टेटमेंट देखें, इंटेलिजेंस मिनिस्टर की माजरत, जो उसने एक बड़े प्रोग्राम के अंदर दिए, तो उसने कहा है कि न सिर्फ ये कि हमें लग रहा है कि हमारी तवक्कु के बरक्स इस वक्त बशर अल असद जो है वो बच जाएगा, सरवाइव करेगा। उसने कहा ये नहीं सिर्फ कि सरवाइव करेगा बल्कि ये कम अज़ कम 2 गुना ज़्यादा ताकत के साथ जो है वो एमर्ज करेगा, पहले से ज़्यादा ताकतवर होकर सामने आएगा। और उसने वाज़े तौर पे ये कहा कि उसकी ये ताकत मरहून मिन्नत है हिज़्बुल्लाह की और ईरान की। तो ये बहुत वाज़े तौर पे आप समझेंगे चेंजिंग्स हैं, जिसके नतीजे में इंशाल्लाह ताला जो सूरत हाल जिस समत में जा रही है वो ये है कि जो मुज़ाहमत का ब्लॉक है वो प्रूव कर रहा है कि वो कैपेबल है, वो मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है, और जो प्रो अमेरिका ब्लॉक है वो किसी भी रंग और शेप में आ रहा है। ये आप जहन में रखें कि वो गिरगट बदल के आ रहा है, कहीं वो इनकलाब के नाम पर आ रहा है, कहीं अपराइजिंग के नाम पर आ रहा है, कहीं वो जो है दहशतगर्दी के नाम पर आता है, वो प्रैक्टिकली इंशाल्लाह फेल हो जाएगा।
अभी जैसा कि आपने बताया कि शामी जो हिजब मुखालिफ के ग्रोह हैं, जिहादी ग्रोह, इंतहा पसंद ग्रोह, जो शामी हुकूमत के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हैं, उनके अंदर भी आपस में शदीद किस्म की मारामारी और कत्लो गारतगरी चल रही है ताकत के हुसूल के लिए। इस तरह की चीज़ें हमें पाकिस्तानी शिद्दत पसंद ग्रोहों में नज़र नहीं आई, इसकी क्या वजह है?
मसला इन मिलिटेंट्स को चलाने वाले पॉलिसी मेकर्स ही का है। पाकिस्तान में भी अगर आप देखें ना, तो इन्होंने जो ग्रुप्स बनाए हैं तमाम एजेंसीज के अंदर इन्होंने मुख्तलिफ ग्रुप तश्कील दिए हैं लोकल, जो मिलिटेंट्स के साथ लड़े हैं, तो वो कुछ ना कुछ सिलसिला तो जारी रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी ये हुआ है, और तालिबान ने उसी तरीके से उनकी मसाजिद के ऊपर, उनके इलाकों के ऊपर, उनके अफराद के ऊपर अटैक्स और हमले किए हैं। अलबत्ता ये बात दुरुस्त है कि वो एक खुली जंग में नहीं बदल सका है, खुली जंग में नहीं बदल सका है, और खुली जंग में वहाँ पर भी नहीं बदला है, वहाँ पर भी आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन अभी बाकायदा खुली जंग में नहीं बदला। अभी भी वो एक टेबल के ऊपर बैठे हैं, अभी भी वो बहरहाल आपस में एक दूसरे से नेगोशिएट कर रहे हैं। अलबत्ता ये बात दुरुस्त है, पाकिस्तान जो है अनफॉर्चुनेटली हमें जो इत्तलात मिली और जहाँ वो लोग मुख्तलिफ जो वीडियोज़ हमने देखी, तो जो कसीर तादाद है वो पाकिस्तान से गई है। अरब भी पाकिस्तान से गए हैं, ये उज़्बक और ताजिक भी पाकिस्तान से गए हैं जो हमारे ट्राइबल एरिया के अंदर रह रहे हैं, और ख़ुद ट्राइबल एरियाज़ के लोग हैं वो भी पाकिस्तान से गए हैं। ये बहुत बैड फिनोमेना है पाकिस्तान के लिए, इसको बहुत सोचने की ज़रूरत है कि वो मिलिटेंट्स जो पाकिस्तान से सैकड़ों मील दूर जाकर एक मुल्क के अंदर डिसइंटीग्रेशन के लिए पूरा माहौल बना सकते हैं, व्हाट दे कैन डू इन पाकिस्तान, इसके ऊपर पाकिस्तानी इदारों को बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है।
यहाँ पर एक और सवाल निकलता है, गो के शाम से मुतालिक है लेकिन इसका ताल्लुक आलमी ताकतों से बनता है, कि एक तरफ तो शाम को यूरोपीय यूनियन और अमरीका असलाह फराहम करने की बात कर रहे हैं, बल्कि क़रारदाद भी मंजूर कर चुके हैं, तो दूसरी तरफ रूस भी शाम को असलाह फराहम कर रहे हैं, तो ये कहीं ऐसा तो नहीं कि शाम के कंधे पर रख के दोनों आलमी ताकतें जो हैं वो अपनी जंग लड़ रही हैं?
नहीं, देखें यूरोप ने जो कहा है, उन्होंने पहले बैन लगाया हुआ था कि हम मिलिटेंट्स को डायरेक्ट असलाह नहीं प्रोवाइड कर सकते, अब उन्होंने ये बैन लिफ्ट किया है, लेकिन अभी भी देने का ऐलान नहीं किया है। क्यों? कोई मैकेनिज्म नहीं है कि जो इनको देंगे वो कहाँ जाएगा, कहाँ यूज़ होगा, कैसे सेव होगा, सेव रहेगा, सेव नहीं रहेगा, क्या उन्हीं के आदाब के लिए इस्तेमाल होगा, नहीं होगा, कोई मैकेनिज्म नहीं है। लिहाजा अभी तक वो सिलेक्टेड वेपन दे रहे हैं, अलबत्ता बहुत सारा ऐसा मोहलक वेपन दिया गया है कि जिसके नतीजे में कम से कम शाम को वो टेक ओवर कर सके, वो भी बहुत ज़्यादा बैकफायर कर सकता है, लेकिन उस वसी पैमाने पे करने के लिए अभी उन्होंने कानून साजी बाकायदा नहीं किया, देने का ऐलान नहीं किया है, बल्कि जो न देने पर पाबंदी लगाई हुई थी, देने पर पाबंदी जो लगाई थी उस पाबंदी को लिफ्ट किया, एक बात। दूसरी बात यह है कि इसमें अब नफसियाती जंग चल रही है, और जब ये उनको वेपनाइज करने की बात करते हैं तो जाहिर है कि ये तो सेटल गवर्नमेंट है, ये किसको वेपनाइज करने की बात कर रहे हैं? मिलिटेंट्स को। दे आर नॉट गवर्नमेंट, वो स्टेट नहीं है, स्टेट रन नहीं कर रहे हैं, वो हुकूमत नहीं चला रहे हैं, वो बागी हैं, और बागी कहाँ हैं? वो इन्फिल्ट्रेटर हैं, पूरी दुनिया से आए हुए दहशतगर्द हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक हुकूमत है, एक सेटल गवर्नमेंट है, जिसको आज भी दुनिया के 99% लोग हुकूमतों ने तस्लीम किया हुआ है, आज भी उनकी डिप्लोमेसीज डिप्लोमेटिक मिशन जो है वो काम कर रहे हैं। तो सेटल गवर्नमेंट जो है उसको तो आज़ादी होनी चाहिए पूरी दुनिया में, जहाँ से चाहे असला ले, जहाँ से चाहे सौदा करे। लिहाजा रशिया के जो पुराने बैकडेटेड इनके साथ मुख्तलिफ वो हैं एग्रीमेंट्स हैं, तो रशिया ने फिर कहा कि अगर आप ये करेंगे तो मैं उसको ऑनर करूंगा, यानी मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा। उसमें से अहम तरीन S-300 का है, अगर S-300 मिसाइल सिस्टम मिलता है तो आप ये समझें कि इसराइल का पूरा ये जो आयरन डोम सिस्टम है, और इसके अलावा उनका जो पूरा ये डिटेक्शन का निज़ाम है और मिसाइल एंटी मिसाइल सिस्टम है, वो पूरे का पूरा क्रश कर जाएगा और पूरा इसराइल अनसेफ हो जाएगा। जो बाज़ों में खुद उन्होंने अपने आप को बहुत सेफ बनाया, वो बात ही ख़त्म हो जाएगी। तो ये इतना बड़ा थ्रेट है कि उसके बाद प्रैक्टिकली इनके लिए उस सतह पर चलना, एक है कि ऐलान करके चलना, एक है गैर ऐलानिया तौर पर वेपनाइज करना। गैर ऐलानिया तौर पे वो वेपनाइज कर रहे हैं, लेकिन ऐलान करके उस सतह पे चलना उनके लिए मुमकिन नहीं रहा है। बाकी आपके लिए ये बात जाननी ज़रूरी है कि ये रशिया बिलाकर एक बड़ी पावर है। ये रशिया का आखिरी अलाय है मिडल ईस्ट के अंदर। मिडल ईस्ट में रशिया का कोई अलाय कंट्री इस वक्त बाकी नहीं रहा है। तो रशिया ने भी अपना पूरा वेटेज जो है ना वो लगाया है। और फिर जाहिर है कि ज़मीनी हकीकतें क्या हैं, आज ज़मीनी हकीकतें क्या हैं, मैं चंद ज़मीनी हकीकतें आपको बताऊँ, और ये मैं अपने सोर्सेज से नहीं बता रहा, ये मैं सोर्सेज जो बताऊंगा, ये जितने बात अभी मैं बता रहा हूँ ये सोर्सेज हैं, या रॉयटर्स का सोर्स है, या BBC के अपने सोर्स हैं, या मसलन इन ममालक की इंटेलिजेंस के इदारों सॉरी इनकी जो न्यूज़ एजेंसीज हैं उनके सोर्सेज हैं जो नेबरिंग कंट्री है। मसलन एक सिर्फ अगर आप बात करें जॉर्डन के अंदर क्या हो रहा है, जॉर्डन के अंदर सैकड़ों खवातीन की इसमत दरी हो रही है, कैंप्स के अंदर खवातीन रात को बाहर नहीं निकल सकती हैं, ये सीरिया के साथ खेल रहे हैं, ये सीरिया की इज्जत के साथ खेल रहे हैं। और वहाँ प्रैक्टिकल क्या, अरब शियूख वहाँ पे जा रहे हैं और वो वहाँ पर जो है वो ख़वातीन से यानी ज़्यादती का मामला अलग है, और उनको कम से बच्चियों को शादी के नाम पे वो ले जाते हैं, और उसके बाद जो सिलसिला होता है उसका कोई चेक एंड बैलेंस वहाँ पर नहीं, ये भी सिलसिला वहाँ पर चल रहा है। एक उसके बाद वहाँ पर क्या हो रहा है कि वहाँ पर ना उनकी ग़िज़ा है, ना उनके लिए खुराक है, ना उनके लिए पीस है, कुछ भी नहीं है। उन लोगों के जहनों में क्या बात आ रही है कि पूरी दुनिया के ये तमाम ममालक सीरिया के मुकाबले में खड़े हैं, सीरिया को कमज़ोर भी नहीं कर सके हैं, और हम चंद लाख लोग जब इनके रहमो करम पे हैं तो हमें ये गिज़ा भी प्रोवाइड नहीं कर सके हैं, ये आइंदा हमें क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। नफरत इन कंट्रीज से उनके खिलाफ, जिनकी जिसकी इज्जत जाती है, जिसका बेटा जाता है, जिसका। फिर आपको मैं बताऊँ यूनान में क्या हो रहा है, यहाँ से जो बेचारे फैमिलीज हैं वो अपनी औरतों को कहीं इधर उधर करके, तो वो या बाज़कत औरतों के समेत भी वो यूनान निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यूनान में BBC की रिपोर्ट के मुताबिक, BBC इंग्लिश की रिपोर्ट आप देख लें, सैकड़ों लोगों को समंदर में उतरने नहीं दिया गया है, उनको समंदर से 10 मील 15 मील 20 मील दूर डिटेक्ट किया गया है साहिल से, और डिटेक्ट करके उनकी वहीं पर किश्तियाँ डुबो दी गई हैं, उनके बकाया जात भी नहीं मिले हैं। इतना बड़ा जो है आप कह लें कि अलमिये वो जन्म ले रहे हैं, दुनिया उसका नोटिस नहीं ले रही है, ये डेली बेसिस पे हो रहा है। BBC कहती है हर रोज 400 500 500 की फिगर BBC की है, ये हजारों में होगी, डेली की बेसिस पे लोग निकलते हैं और उनके साथ ये वाला हाल हो रहा है। फिर आप देखें कि इनके साथ जो है वो दीगर कंट्रीज के अंदर क्या हो रहा है, सेम यही उनके साथ जो है वो तुर्की के अंदर हो रहा है। तुर्की में उनकी जो इज्जत नफ्स है, उनकी जो उसको पामाल किया जा रहा है। तो प्रैक्टिकली इस वक्त कैफियत ऐसी है कि वेस्ट अपने तमाम तर वसाइल तमाम तर सलाहियतें, और जाहिर है कि वो इन लोगों को खुश थोड़ी रखना चाहते हैं, वो तो उसी मनफी प्रोपेगेंडे की मनफी बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये सारा कुछ किया है। तो अगर आइंदा कोई डिप्लोमेटिक प्रोसेस चलता है तो रशिया ये बावर करता है, जो आपका सवाल था कि अगर आइंदा कोई भी पोलिटिकल प्रोसेस चलेगा तो लोग इस वक्त बशर अल असद से तो खुश हो सकते हैं, लेकिन वेस्ट से और उन नेबरिंग कंट्री से जिन्होंने इस पूरी खून की नदियां बहाने में बुनियादी रोल प्ले किया, उनसे खुश नहीं होंगे। तो ये मैं समझता हूँ उनकी डिप्लोमेटिक सक्सेस है, और उनकी पॉलिटिकल सक्सेस है, और उनकी मिलिट्री सक्सेस है कि उन्होंने उसको जारी रखा।
एक बड़ा दिलचस्प सवाल है कि अरब ममालिक को शाम की फतह के बाद क्या पैगाम मिलेगा।
देखिए गेम चेंज होना तो शुरू हो गई है, और बिलखसूस उसका आगाज़ हुआ है कसैर से, कि जहाँ से हिजबुल्ला ने एंट्री डाली है, और वो स्ट्रेटजिकल उसके बाद थी। उसके बाद आप देखेंगे फिर ये रोल बैक होने का सिलसिला मिलिटेंट्स का तेज़ है। उसके बाद ये नज़दीकी गांव गए, उसके बाद ये गोलान हाइट्स पे गए, उसके बाद अब ये वाइंड अप होने का सिलसिला शुरू हो गया बहुत तेज़, अब हलब की तरफ जा रहा है, बिल्कुल ऐसे बहुत तेज़ से सिलसिला जारी है। तो ये बड़े वाज़े सिग्नल्स हैं, और ये साइंस इत्तफाक से मैं कोशिश करता हूँ कि हम देखें कि वेस्ट क्या कहता है। वेस्ट हॉरिफाइड है, शदीद खौफज़दा है कि भाई हमने जो कुछ किया था वो, उस खौफ जदगी की एक असल बात ये है कि आप क्या समझते हैं ये पॉलिटिक्स है, ये पूरी दुनिया के अंदर चलाए जाने वाली, ये यूं नहीं है कि बॉर्डर्स के अंदर गेम रहती है, ये गेम बॉर्डर्स से बाहर निकलती है। आप अगर अगर तुर्की इनके लिए कुआं खोदेगा सीरिया के लिए, तो खुद उसके लिए कोई कुआं नहीं खोदेगा, खोदेगा उसके लिए भी। اگر جارڈن جو ہے وہ ڈیموکریسی کے نام پہ سیریا کے اندر مداخلت کرے گا تو خود اسے بھی ڈیموکریسی کے نام پہ کچھ ڈیولپمنٹس کی طرف آنا پڑے گا. اگر جو ہے وہ سعودی عرب جو ہے وہ انسانی حقوق کے نام پہ یہاں مداخلت کرے گا تو انسانی حقوق تو وہ تو عورتوں کو بنیادی حقوق نہیں دیے, انسانی حقوق تو بڑی دور کی بات ہے, بنیادی بیسک رائٹس نہیں دیے ہوئے وہاں پر, تو اس کی طرف آنا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سائیکولوجیکلی بھی یہ بدترین ڈیفیٹ سے دو چار ہوں گے جو جن سب لوگوں نے اس پلان کا پارٹ بنے, اور پریکٹیکلی یہ جب سیرین گورنمنٹ سٹیبل ہوگی تو اس کے شاکس خود ان کو اپنی سرزمین کے اندر وہ کرنے پڑیں گے. وہ اس کو پلان کر رہے ہوں گے ظاہر ہے, لیکن اس سے آپ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے,
کیونکہ ہم ایک نیوٹرل انداز میں ہمیشہ گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لہذا یہاں پہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حزب اللہ لبنان اور جمہوری اسلامی ایران کی جو افواج یا جو گروہ وہاں پر حصہ لے رہے ہیں شام میں مخالف گروہوں کے خلاف, ان کے کیا اہدافات ہیں شام کی مدد کرنے کے سلسلے میں؟
اگر آپ کو یاد ہو قصیر کے حملے سے پہلے آغا حسن نصراللہ نے جو گفتگو کی, آغا نے کیا کہا؟ آغا نے کہا یہ وہ ملیٹنٹس ہیں کہ جنہوں نے پاکستان, انہوں نے مختلف کنٹریز کے حوالے دیے, کنٹریز کا نام لے کے کہا کہ انہوں نے ان کے اندر شیعوں کو کم مارا ہے, انہوں نے اہل سنت کو زیادہ مارا ہے. یعنی حزب اللہ نے جس کے ساتھ جنگ کی ہے وہ اہل سنت کے قاتل ہے, نہ یہ کہ شیعوں کے قاتل ہے. وہ ممکن ہے 20 شیعوں کے قاتل ہوں, اگر میں پرسنٹیج بتاؤں تو وہ 80 سنیوں کے قاتل ہیں ان کے ساتھ. تو حزب اللہ نے انسانیت کے قاتلوں کے مقابلے میں جنگ لڑی. ایک دوسرا, پوری دنیا, یہ امریکہ کس بنیاد پہ حملہ کرتا تھا عراق کے اوپر, کس بنیاد پہ حملہ کرتا افغانستان کے اوپر؟ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پری ایمپٹیو رائٹ ہے. یہ رائٹ تو ہوتا ہے لیکن اس رائٹ کا مس یوز نہیں ہونا چاہیے. پری ایمپٹیو رائٹ یہ ہے کہ مجھے ایک جگہ سے خطرہ ہے, درپیش ہے, میں اس خطرے کو قبل اس کے کہ وہ خطرہ پریکٹیکل شیپ میں آئے میں اس خطرے کو ڈیفیوز کرنا چاہتا ہوں. کیا ریزسٹنس کے بلاک کو پری ایمپٹیو سٹرائک کا حق نہیں ہے؟ جبکہ پریکٹیکلی یہ پری ایمپٹیو بھی نہیں ہے. یہاں حملہ کیا جا چکا ہے مزاحمت کے بلاک کے اوپر ویسٹ کی طرف سے, عرب کنٹریز کی طرف سے, سرمایہ کے ساتھ, مین پاور کے ساتھ, بدترین دہشت گردی کے ساتھ حملہ کیا جا چکا ہے. تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایران حزب اللہ کی جنگ نہیں ہے, یہ مزاحمت کے بلاک کی جنگ ہے, اور مزاحمت کے بلاک ہی کی سزا دی جا رہی تھی بشار الاسد کو, اور بشار الاسد اور یہ تمام مزاحمت کے بلاک نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اسٹرینتھن ہوتا ہے اور وہ ہر کرائسس سے مزید مضبوط ہو کے نکلتا ہے. یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ خطرہ صرف سیریا کے اندر رہنے والا نہیں تھا. یہ جو گاؤں آپ نے دیکھا قصیر, صرف 10 میل دور ہے لبنانی بارڈر سے, اور لبنان سے تمام تر انفلٹریشن اسی روڈ کے ذریعے سے ہو رہی تھی, بالخصوص ملیٹنٹس کی انفلٹریشن, اور اس کے بعد ملیٹنٹس کی کمر جو ہے وہ ٹوٹی ہے. یہاں پر خطرہ جو تھا وہ موجود تھا, لبنان کے لیے خطرہ موجود تھا, اس نے لبنان کے اوپر افیکٹ کر رہا تھا, لبنان کی اپنی انٹیگریٹی جو ہے وہ اس وقت خطرے میں دو چار تھی. تو حزب اللہ نے وہاں پر رول پلے کر کے لبنان کو خطرے سے بچایا ہے. یہ پری ایمپٹیو ہے کہ حزب اللہ نے یہاں پر رول پلے کیا ہے تاکہ لبنان کو محفوظ بنایا جا سکے. یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بارڈر کے اوپر آ جائیں اور پھر لبنان کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کا کام شروع کر دیں. تو حزب اللہ نے بنیادی طور پہ لبنان کو سیو کیا ہے, ایران نے مزاحمت کے بلاک کو سیو کیا ہے, شام نے بنیادی طور پہ ان عرب کنٹریز کا حقیقی چہرہ دنیا کے سامنے دکھایا ہے, اور اس ساری کیفیت کے نتیجے میں جہاں سب سے مظلوم شامی عوام ہیں جن کی اکثریت یعنی ان کا بیان نہیں کیا جا سکتا کہ ان بدبختوں نے ان کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے, اور اس کے نام پر انہوں نے پوری دنیا کے اندر کیا ظلم کیا ہے. تیونس سے خواتین کو لایا گیا نکاح ہے, اس کے جنگ کے نکاح کے نام پر, جہاد النکاح کے نام پر ان کو لایا گیا, اور یہاں آ کے ان کے ساتھ جو کچھ سلوک ہوا وہ بھی پوری دنیا کے سامنے اس وقت ورغلا کے پوری دنیا سے لوگوں کو یہ لے کے آئے. تو یہ ان پریکٹس, اب آئندہ جو کھلے گا چیپٹر وہ ان کی جنایتوں, ان کی خیانتوں اور ان کے جرائم کا کھلے گا. انہوں نے انسانیت کے خلاف جو جرائم وہ کیے ہیں, اب یہ چیپٹر جو ہے وہ کھلے گا اور یہ دنیا کے سامنے آئیں گے کہ انہوں نے کیا ہولناک جو ہے وہ اقدام کیے ہیں. عملاً ایران کے اور ان کے انٹرسٹ کو شیعہ انٹرسٹ کہنا زیادتی ہوگی, اس لیے کہ سیرین گورنمنٹ شیعہ نہیں تھی, اس لیے کہ سیریا کے اندر جو مر رہے ہیں وہ شیعہ نہیں ہیں, اس لیے کہ سیریا کے جو مائگرنٹس ہیں پوری دنیا کے اندر وہ بھی شیعہ نہیں ہیں, اور سیریا کے اندر جو جنگ شروع کی گئی ہے وہ بھی شیعوں کے لیے نہیں شروع کی گئی, وہ بھی مزاحمت کی اس بلاک کو جو امریکہ اور اس کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے اس کو کرش کرنے کے لیے کی گئی ہے, اور اس کو جوابی جو ریٹیلیشن کر دیا ہے اس کے نتیجے میں آپ یہ جنگ مزاحمت کی جنگ ہے, اور مزاحمت ہی کامیاب ہوئی ہے, ریزسٹنس از سکسیزفل.
ایک اور سوال ہے چھوٹا سا, کہ کیا حزب اللہ اور ایران اس حالیہ بحران کے بعد جو شام میں موجود ہے ختم ہونے کے بعد یہاں رکیں گے یا نہیں چلے جائیں گے؟
دیکھیں, ایک جو میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال پریکٹیکلی اس طرح سٹیبل نہیں ہوگی کبھی بھی, ये वो हाल करेंगे कि टारगेट किलिंग और इस टाइप की चीज़ें चलती रहेंगी, ये तो चलेगा। दूसरी बात ये है कि लेकिन ज़ाहिर है जो मकासद लेकर ये लोग आए थे वो नाकाम हो गए, तो प्रैक्टिकली फेल तो हो गए। दूसरी बात ये है कि अगर मैं ये कहूँ कि फिज़िकल प्रेजेंस जारी रखेंगे तो ये कहना काबिलस वक्त है, लेकिन ये दोनों अपने इंटरेस्ट को सीरिया के अंदर सेफगार्ड करेंगे, इम्कान ही नहीं है कि ये सेफगार्ड ना करें। इतना बड़ा प्रॉब्लम होने के बाद अगर ये सीरिया के अंदर मुजाहमत के इंटरेस्ट को सेफगार्ड ना करें फिज़िकली इन मटेरियल, तो ज़ाहिर है कि इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं हो सकती। और इस ब्लाक ने ये साबित किया है कि वो बहुत वाइज है, बेवकूफ़ नहीं है, तो वो प्रैक्टिकली वहाँ पर रहेंगे इंशाल्लाह।
शाह साहब, जैसा कि मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक दुश्मन जो है वो दिफा की हालत तो दूर की बात बल्कि फरार की हालत में है, ऐसी सूरत हाल में वो जाते जाते क्या कुछ कर सकता है शाम के अंदर?
देखिए, अभी कंस्पिरेसी गेम्स का खदशा है मुझे। मसलन इन्होंने वेस्ट की प्रोवाइडेड मुख्तलिफ गैसेस यूज़ की हैं जो इंसान को बेहस करने वाले और जो जंगी जराइम में आती हैं, ये इसको डालने की कोशिश करेंगे सीरियन गवर्नमेंट पे। एक दूसरा, ये इंसानियत के खिलाफ जराइम भी करेंगे कि जेनोसाइड जिसे आप कहते हैं, कत्लेआम कहते हैं, इस तरह की चीज़ें ये वाला लोग भी करेंगे, ठीक है। तीसरा, ये कोई ऐसी छिड़खानी करने की भी कोशिश कर सकते हैं कि जिससे इसका मसलन सीन चेंज हो जाए, मसलन कोई क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, इस तरह की कोई सीन भी करने की कोशिश कर सकते हैं अपनी खिफत को मिटाने के लिए, ताकि सीरियन गवर्नमेंट को इस तरह की किसी जंग में भी उलझाया जाए। ये सारे इम्कान मौजूद हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि पेशबंदी काफ़ी मजबूत कर चुके हैं ये लोग, और अब तो ज़ाहिर तमाम क्राइसिस सामने आ चुके हैं। और सीरियन इसने भी साबित कर दिया है, सीरियन बिलखसूस जो फौज है, कि वो सिविल वार की माहिर फौज है। उसने पूरी दुनिया में मसलन इधर शाम में भी उसने सिविल वार लड़ी है, इराक के अंदर, इधर लबनान के अंदर भी उसने सिविल वार लड़ी है। तो ये तो बाकी एक चीज़ जिसे मेरे ख्याल है बहुत वाज तौर पर हिजबुल्ला ने डिक्लेयर किया है, वो है शाम में सैयदा ज़ैनब का मज़ार, और इसी तरीके से वो मुकद्दस मकामात के जो तमाम मुसलमानों की इज्जत और हुरमत के लिए हुरमत के इलामत ठहरते हैं, जैसे हुजर बिन अदी का वहाँ पर था, जैसा कि जनाब रुकैया का है, या जैसा कि बाज़ अंबिया के हैं और बाज़ जो हैं वो तारीखी वो मकामात हैं। मैं समझता हूँ कि इनके हवाले से ये लोग जाते जाते कोई बड़ी खयानत तो कर सकते हैं, लेकिन सैयदा ज़ैनब और उनके अतराफ़ के जिनके बारे में हिज़्बुल्लाह ने डिक्लेयर किया है, उनके ऊपर इंशाल्लाह कभी भी आने की जरूरत नहीं कर सकते हैं। वहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम जो मैंने सुना है वो शायद दुनिया के बेहतरीन सिक्योरिटी सिस्टम में से एक है, तो वो अब इनके लिए अब मैनेजेबल नहीं है कि वो वहाँ पे कोई बड़ी कार्रवाई करें।
नाज़रीन कराम, इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे प्रोग्राम से इस्तेफादा किया होगा और शाम के बारे में इबहाम दूर हुए होंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।